नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय इति उद्रेक स्वलीलाभिः आनन्दकुण्डे स्वघोषां निमज्जन्तां आख्यापयन्तां तदीया ईशितव्येषु भक्तिं जितत्वा पुनः प्रेमतः ताम् शत आवृत्ति वन्दे इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितव्येषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे इति प्रीक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितव्येषु भक्तेर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताभृत्तिबन्धे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं परेषादपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विराष्टां किमन्यैः इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैः ृतम् कुन्तलैः सिद्धरक्तैश्च गोप्या मुश्चुम्बितम् बिम्बरक्ताधरम् मे मनस्या विराष्टामलम् लक्षलाभये नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गृहारेश मामज्ञमेतद् विदुष्य गृहारेश मामज्ञमेभ्यद् अक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमूर्तैव जद्वत् चितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वतां मे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे स्थितामोदरेह नमस्ते स्तु दाम्ने सुरदीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्याम इति दृक्ष लीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमाज्जन्तमाख्यापयन्ता तदीयेषु भक्तैर्जितत्वा पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्ति वन्दे
कहे गए हैं वो इति शब्द से उसको स्मरण में ले लेना चाहिए।
नमामिश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियोलो खला धावमानम परामृष्ट मत्यंत सुवृत्त गोप्य। मैं उस परम ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जिनका रूप सच्चिदानंद में है और जिनके कानों में कुंडल बहुत अच्छा लग रहा है तथा तो गोकुल में जो अतिशय शोभायमान है। यशोदा के भय से उखल से कूद करके जो भाग रहे थे परंतु अंत में गोपी यशोदा ने दौड़ करके उनको पकड़ लिया। रुदंतम मुहुर नेत्र जुग्मम मृजंतम करांभोज जुग्म सातंक नेत्रम मुहुर्श्वास कंप त्रिरेखांग कंठ शीताग्रही वामोदरम भक्तिबद्धम। माँ यशोदा के पकड़े जाने पर माँ यशोदा के द्वारा पकड़े जाने पर जो बारंबार रो रहे थे और अपने दोनों कर कमल से अपने आंखों को मल रहे थे और उनके आंखों के आसपास काजल फैल रहा था, जिनके नेत्र भय से युक्त हैं और बारंबार दीर्घ निश्वास के कारण जिनका कंठ कांप रहा है, जो तीन रेखा से युक्त है, गला को ऊपर करके माँ से कृपा की याचना करते हुए जो बांधे गए हैं, वास्तव में भक्ति से बांधे गए हैं, ऐसे प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार अपनी लीलाओं द्वारा जो अपने घोष को अपने ब्रज को आनंद कुंड में निमज्जित करते रहते हैं, जैसा हम लोग और कुंड देखे हैं जल का कुंड, लेकिन आनंद का कुंड नहीं देखे जिसे केवल आनंद ही भरा है, केवल सुख भरा है। आनंद समुद्र अगर कह दिया जाए तो डर लगता है, समुद्र चाहे आनंद हो चाहे कुछ भी हो, समुद्र कहने पर उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग का अनुभव है कि यहाँ का जो समुद्र है वो खारा है, तो समुद्र कहने पर मन उतना अच्छा से ग्रहण नहीं कर पाता। यद्यपि भगवान की लीलाओं का जो आनंद है वह अनंत कोटि समुद्र है आनंद का, लेकिन फिर भी यहाँ पर सत्यव्रत जी कुंड कह रहे हैं। भगवान श्रीकृष्ण किस प्रकार की बहुत सी लीलाओं द्वारा स्वलीला भी अपनी लीलाओं द्वारा अपने ब्रजवासियों को आनंद के कुंड में सराबोर करते रहते हैं। निमज्जन मज्जन या निमज्जन का अर्थ होता है स्नान करना, डूब जाना, तो सराबोर करते रहते हैं भगवान इस प्रकार की लीलाओं द्वारा। श्रीमद् भागवतम में यह बात स्पष्ट है कि भगवान ब्रज में जो भी बाल लीला कर रहे हैं उसके द्वारा ब्रजवासियों को सुख देना चाहते हैं और अद्भुत सुख, जब प्राकृत बच्चों की बोली और उनका खेलना माता पिता को और अन्य लोगों को भी आनंद में मग्न कर देता है, तो जहां साक्षात भगवान अपनी दिव्य लीला कर रहे हैं, तो उनको देखने वाले, उनकी लीलाओं को सुनने वाले, उनको छूने वाले सभी आनंद के कुंड में डूब जाए। डूब जाने शब्द पर कभी कभी शंका करते, एक बार एक भक्त ने हमसे पूछा आखिर तो डूब गया ना, वह वर्णन को वर्णन कर रहा था आनंद के समुद्र में वो डूब गया, वो डूब गया, वो बेचारा देखा है जल, तो जल में डूब जाने पर आदमी मर जाता है, उसको कहता इस तरह से आनंद समुद्र में डूब गया तुम्हारे, उसको पता नहीं ये आनंद का समुद्र है, जीवन का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है, इससे व्यक्ति बहुत आनंदित रहेगा। केवल डूबने से ही थोड़े कोई मर जाता है, मछलियां तो रात दिन पानी में रहती, वो तो मरती नहीं है, तो उसी जल में वे सुखी रहते हैं, बल्कि बाहर आने पर मर जाती हैं छटपटा कर, भीतर आनंद में रहती हैं। तो ब्रज में जो भगवान की लीलाएं हैं वो लीलाएं आनंद कुंड हैं, इसलिए भागवतम आनंद कुंड है। बस जिस व्यक्ति को सुखी होना है, दुख से मुक्त होना है, तो इस कुंड में गोता मारना चाहिए, एकदम जलन मिट जाएगी। जस्यामयी श्रीमाणायाम कृष्ण परम पुरुष से भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय को नष्ट कर देती है भागवत की कथा। और कैसे, जस्यामयी श्रीमाणायाम, सुनने की इच्छा करते ही अथवा सुनना चालू करते ही शोक मोह गया था, भक्ति उत्पन्न होती, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है और वह प्रेम शोक मोह भय को नष्ट कर देता है। सभी इसी उपाय में पड़े हैं कि हमारा शोक, हमारा मोह, भय नष्ट हो जाए। लेकिन क्या कोई संसार में ऐसा साधन है केवल सुनने मात्र से अब शोक मोह भय दूर हो जाए? जैसे हमें सूर्य मारा है, सुनना चालू किए उसी समय शोक मोह भय नष्ट हो सकता है, फिर पूरा सुन लेने पर तो कहना ही क्या। जिन लीलाओं के विषय में सत्यव्रत जी कह रहे हैं वो सारी लीलाएं श्रीमद् भागवतम में दी गई। इति इद्री, इति का अर्थ इस प्रकार, इद्री का अर्थ ऐसी, इद्रिक स्वलीला भी, यह एक में शब्द है, अलग नहीं है, इद्रिक स्वलीला भी है, ऐसी ही अनेक अपनी लीलाओं द्वारा स्वघोषण अपने घोष को आनंद कुंडे निमज्जंतम। घोष क्यों कहते हैं ब्रज को? श्रीमद् भागवतम की टीका में श्रीपद सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रज को जहां गौएं रहती हैं, जहां गोप रहते हैं, तो इसको घोष क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि वहां पर हमेशा आवाज होती रहती है, आवाज होती रहती है, कोई गाय बोल रही है, बछड़ा बोल रहा है, तो गोप बोलते हैं ले जाओ घड़ा भर गया, दूसरे लाओ, दूसरे बछड़े को खोलो, तो गायों के गले में घंटियां मंजी रहती हैं, वो घंटियां बोलती रहती हैं, तो इस तरह हमेशा वहां घोष होता रहता है, आवाज होती रहती है, इसीलिए उसको घोष कहते हैं। ये चुपचाप रहना मरा हुआ जीवन है, वास्तव घोष सदा घोष होता रहता है, और खास करके भगवान के ब्रज में और अधिक घोष होता रहता है। गोप सब भगवान की कीर्ति गाते रहते हैं, बच्चे बांसुरी बजाया करते हैं, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई बुला रहा है गौरी को, ही करके बुलाता रहता है और गौरी आवाज करती है, तो इसलिए उसको घोष करते हैं। तो अपने घोष को अर्थात घोषस्थित ब्रजवासियों को, गोपियों को, गोपों को और बच्चों को, सबको आनंद के कुंड में भगवान डुबाते रहते हैं इस प्रकार की लीलाओं द्वारा। यद्यपि हम लोगों का ऐसा सौभाग्य नहीं है कि हम भगवान की उन लीलाओं को प्रत्यक्ष देखें, साथ रहें, लेकिन भगवान वेदव्यास देव ने हम सबको यह सौभाग्य देने के लिए उन लीलाओं को श्रीमद् भागवतम में लिख दिया है। यदि यथार्थ उसका श्रवण कीर्तन किया जाए तो वही आनंद प्राप्त होगा जो भगवान को देख करके प्राप्त होता है। ईश्वर वृंदावन में मैं एक दिन कथा कह रहा था भागवत सप्ताह, तो वर्णन था कि कृष्ण बलराम और क्रूर जी को लेकर घर जा रहे हैं गोदोहन के स्थान से। तो एक तरफ कृष्ण थे, दूसरे तरफ बलराम जी थे, ये दोनों भाई थोड़ा थोड़ा आगे चल गए थे अक्रूर जी से। अक्रूर जी का एक एक हाथ पकड़े और एक एक हाथ में वे कुछ बर्तन लिए थे, दूध ले जा रहे थे, गायों को बांधने की रस्सी वगैरह एक एक हाथ उनके फंसे थे और एक एक हाथ से श्री अक्रूर जी के हाथ पकड़ लिए थे, ऐसे जा रहे थे। अक्रूर जी कभी कभी उनके मुख पर देखते जाते थे और अपना अहोभाग्य मानते थे। तो दोनों भाई इनको अपने घर ले जा रहे थे। यह कथा कहते समय मैं कहा कि अहो, उस समय वीडियो कैमरा रहा होता, ये फोटो लिया गया होता किस तरह कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर आ रहे हैं घर। जब मैं यह कहा तो एक माता जी बोल उठी, महाराज जी आप वीडियो ही तो दिखा रहे हैं हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सुन रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम देख रहे हैं। वास्तव में भगवान वेदव्यास जी ने इन लीलाओं को ऐसा लिखा है, इसको ठीक ठीक कहा जाए, सुना जाए, तो यही अनुभूति होगी कि हम भी भगवान की उस लीला में हैं और हम भी भगवान कृष्ण को मां यशोदा के द्वारा बांधते हुए देख रहे हैं और कृष्ण को रोते हुए देख रहे हैं। ये सारी लीलाएं मन में इसी तरह स्फुरित होती है। तो जो सुख है भगवान की उन लीलाओं में साथ रहने में मिलता था, वही केवल सुनने मात्र से सुख मिलता है और भगवान यही सुख देने के लिए सबको, विशेषकर अपने भक्तों को, ये सब लीलाएं करते हैं। सही इस प्रकार से पराधीन होने की लीला क्यों करते हैं, तो दो कारण बता रहे हैं। एक तो स्वघोषम निमज्जनतम, अपने घोष को ब्रजवासियों को आनंद कुंड में सराबोर करने के लिए, और दूसरा एक सिद्धांत का प्रचार भगवान करना चाहते हैं। आख्यापयंतम, व्याख्या करना चाहते हैं। आख्यापन का अर्थ होता है प्रचार करना, भगवान प्रचार कर रहे हैं किनको, तभी ऐसी तव्य जो भगवान के इसी तव्य है, इसी तव्य का अर्थ होता है कंट्रोलेबल, कंट्रोल जो भगवान के अधीन है, जैसे इंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सब ये भगवान के इसी तव्य है और इस कारण से भगवान की इसीता को जानते हैं। कहीं कहीं पाठ है इसी तव्य से, दोनों पाठ है। तो जो भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं, ऐश्वर्य भाव से भजन करना चाहते हैं, उन लोगों को भगवान यह दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मैं भक्तों के द्वारा जीत लिया गया, मैं भक्तों के वश में। उन बड़े बड़े देवताओं को भगवान ये ट्वीट करना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं, जैसे यशोदा के वश में मैं। अब यशोदा मुझे खिलावे पिलावे चाहे बांधे जो इच्छा कर ही रहे, तो और सब लोग मेरे दास हैं, मेरी आज्ञा के अधीन है, लेकिन मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, इसको आख्यापयंतम भगवान प्रचार कर रहे हैं। इतिदृक सलीला भी अपनी ऐसी लीलाओं द्वारा भगवान ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं और अपने अधीन रहने वाले ब्रह्मा शिवादि देवताओं को ये बताना चाहते हैं कि मैं भक्त के वश में। मां यशोदा कभी ऐसा नहीं समझती है कि कृष्ण को अब थोड़ा बुद्धि हो गई है, ये हो गया है, वो यही समझती है कि ये तो एक बच्चा है, इसको खाने का भी ज्ञान नहीं है, कभी कभी मिट्टी खाने लगता है, मिट्टी खाने पर हाथ पकड़ करके डांटती है कि अरे लाला ये क्या खा रहा है, क्या हमारे घर में माखन नहीं है, क्यों खाया क्यों खाया, छड़ी दिखा करके कहती है उगलो उगलो। श्री कृष्ण जल्दी जल्दी माटी को लार बना करके अब निगलने लगते हैं, तो मुख खोलने के बाद मां देख ना पाते, जल्दी जल्दी मिट्टी का अंश थोड़ा थोड़ा है लेकिन भीतर लार बना करके, लाला बना करके, और जल्दी जल्दी उसको घोट रहे हैं। घोटने के बाद कहते हैं ना हम रक्षित आनंद सर्वे मिथ्या विशंसिना, मां मैं नहीं खाया हूं। तो मां कहती है ये सब तुम्हारे सखा कह रहे हैं, तुमने मिट्टी खाया है, अभी अभी पता चला है। कहते सर्वे मिथ्या विशांसिना, ये सब झूठ बोलने पर पड़े हुए हैं, इनका काम ही है केवल झूठ बोलना। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान जी आप कह रहे हैं कि ना हम भक्षितवान अम्ब, इसका अम्ब हे मा न अहम एवं भक्षितवान अपितु सर्वे, भक्षितवान का सर्वे शब्द इधर लगाने पर मां मैं ही नहीं खाया हूं, ये सब खाए हैं। इसीलिए तो भगवान अपने मुख में सबको दिखा दिए, बाद में दिखाए सारे गोप है, सारा विश्व है, सारे देवता है, सब खाए हैं, मैं ही नहीं खाया हूं, यह भी अर्थ किया गया। लेकिन तत्कालिक अर्थ जो मां यशोदा समझ रही है उसका यही अर्थ है कि मां हम भक्षितवा नंबर मां मैं नहीं खाया हूं मिट्टी, मैं मिट्टी क्यों खाऊंगा, मैं तो तुम्हारा दूध पीता हूं, दूध दूध ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, मिट्टी क्यों खाऊंगा। और वास्तव में खाए थे भगवान मिट्टी क्यों खाए थे, इस विषय में भक्तों ने बहुत बहुत बातें कहा है कि तीनों लोक में रहने वाले जीव सबको इच्छा थी कि हमको ब्रजरज मिले, ब्रजरज मिले, और भगवान के भीतर ये सब है तो भगवान उनकी इच्छा को देख करके ब्रजरज खाली। इस भाव कहते हैं हरीश्वरी जी कि भगवान परशुरामा अवतार में यह पृथ्वी बीजों को दे दिए थे ब्राह्मणों को, तो भगवान ने सोचा कि उसने पूरी पृथ्वी दे दिया था ब्राह्मणों को बीजों को, तो इस समय थोड़ी पृथ्वी तो देनी थे, थोड़ा अंश देना थे बीजों को, दांतों को, छोटे छोटे दांत थे उनको मिट्टी दे रहे हैं, दांत को भी बीज कहते हैं। एक बार जन्म का दांत टूट जाता है, पहला दांत टूट जाता है दूसरी बार जन्म लेता है, इसलिए दांत को भी बीज कहते हैं। इसमें बहुत से भाव दिए गए हैं, बहुत से भाव दिए गए, तो भगवान कहा तो मैं माटी नहीं खाया हूं। भगवान का इस तरह से झूठ बोलना इतना प्रिय लगता है, इतना प्रिय लगता है कि क्या कहा। और मां देखी है खाते ही, ऐसी बात नहीं है तो केवल हम लोग बताने से कह रहे हैं। जब भगवान जी ने कहा कि मां कृष्ण माटी खा रहा है, माटी खा रहा है, तो मां जा करके धीरे धीरे देखी तो सचमुच खा रहा है। और जब मां हाथ पकड़ ली क्या कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं, वो जल्दी जल्दी मिट्टी को भीतर करने लगे। और जब उनको विश्वास हो गया कि मुख साफ हो गया, मिट्टी का कोई अंश नहीं है, तब तो कहते ना हम भक्षित नंबर सर्व मिथ्या भी समझी ना, मां मैं बिल्कुल नहीं खाया हूं मिट्टी, सब झूठ बोलते हैं। तो मां कहती है इनको तो मान लेती हूं कि ये झूठ बोलते हैं, और ते कुमार ते अग्रज अपि अयम वदति, तुम्हारा अग्रज भी कह रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई तो झूठ नहीं बोलेगा। तो भगवान कहते ये बलराम भी वैसे ही है, ये भी कोई ये तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। भगवान अजीब ढंग से बोलते ये भी वैसे ही है, ये कोई काम का आदमी नहीं है। तो मां हाथ पकड़ करके डांट रही है, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य में मुखम, तो भगवान कहते हैं यदि सत्य गिरा मां, यदि तुम ये समझ रही हो कि ये सारे गोप सखा हमारे सत्यवादी हैं और बलराम भी साथ बोलना चालू कर दिया है, अगर तुमको ये विश्वास है तो समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख को सामने देख लो। यह वास्तव में वे पोज बना रहे थे कि ऐसा कहूंगा तो मां कहेगी ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मां तो जिद में आ गई थी, ठीक है मुख खोलो मुख खोलो देखती हूं। समक्षम पश्य में मुखम, श्री कृष्ण ऐसा कहेगी सामने मेरा मुख देख लो, लेकिन मुख को बंद किए थे, अब उनको भय था कि कहीं दांत में इधर उधर मिट्टी लगा होगा तो पकड़ लेगी, ऐसे ये कहते हैं मेरे सामने मुख देख लो, ऐसे मुख को बंद रखकर। मैं कहते ठीक है दया दे ही बाओ मुख खोलो मुख खोलो, तब कृष्ण मुख खोले, ऐसे मुख खोले तो मां यशोदा देखती है मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड सब कुछ, और उसने ये भी देखा कि ब्रज यही इसके भीतर है और एक यशोदा अपने एक बेटा को डांट रही है, भीतर कृष्ण के मुख में देख, यह देखते ही चारों तरफ देखने लगी, विचार करने लगी, किम स्वप्न देत बुद्धि मोह किंवा मदीय बत बुद्धि मोह, नहीं किम स्वप्न एतद उपदेव माया किंवा मदीय बत बुद्धि मोह, अरे तुम क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, सपना देख रही हूँ क्या? कृष्ण के मुख को देख करके फिर इधर उधर देखती है, उधर से नहीं नहीं तो जागृत दशा है, सपना नहीं देख रही, उधर हमारा घर है, उधर लोग घूम रहे हैं, सपना नहीं है, कोई देवता की माया है क्या, किसी की माया है क्या? तो फिर सोचते अगर माया होती तो सब लोग माया में होते, दूसरे लोग अपने काम धाम में है, केवल मुझ पर ही असर है इसका, माया नहीं है। तब कहते किंवा मदीय बत बुद्धि मोह, क्या मेरे बुद्धि का ही कोई भ्रम है, अथवा मेरे पुत्र का ही कोई ऐश्वर्य तो नहीं है, या कहीं इसी की कोई करामात तो नहीं है, ये क्या देख रहे हूँ? फिर भगवान नारायण को मनाने लगी, हे नारायण मेरे बेटा कोई कौन भूत लग रहा है, हाय आप कृपा कीजिए, जो डीटी भगवान घर में थे वहां जाकर प्रणाम करने लगे कि हमारे पुत्र की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्या मैं इसके मुख में देख रहे हूँ, क्या हो गया? ये कह करके भगवान के सामने, मतलब श्री नारायण के सामने वो आंख बंद करके ऐसे बैठ गई, आंख बंद करके बैठी तो कुछ देर के बाद देखती है कि मेरा बेटा उस तरह से खेल रहा है, तो गोद में उठा करके दूध पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी पूरा, इसके बाद उसने सुलाया केस में। तो इस प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं, उनका असत्य बोलना ही बहुत प्रिय लगता है ब्रजवासियों को सुख देने के लिए, इन लीलाओं के द्वारा में आनंद में सराबोर हो जाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कई बार दशम स्कंध में बात कहते हैं कि ब्रजवासियों को पता ही नहीं था कि संसार का दुख क्या है, इतना आनंद में मग्न रहते थे, इसलिए तो आनंद कुंडे शब्द कहा गया, आनंद कुंड, दुख के ज्वाला में दवानल में जलता हुआ व्यक्ति आनंद के कुंड में निमज्जित हो जाए, परम सुखी हो जाए, इसके लिए लीला करते हैं। और जो ऐश्वर्य भाव से भगवान की आराधना करते हैं उनमें ये प्रचार कर रहे हैं कि मुझसे ऐसा प्रेम करना चाहिए जो सोदा की तरह मैं भक्तों के हाथ का खिलौना बन जाता हूं, मैं अभी तो मैं अब इसके बाद आगे के श्लोक का सुशार्थ करना चाहता हूं। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधि न चान्यं गृहेऽहं वरे साधकीह, हे देव आपसे मैं मोक्षम वरम न याचे, मैं आपसे मुक्ति नहीं चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण से मुनि प्रार्थना कर रहे हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्षावधि, मैं मोक्ष नहीं चाहता हूं और न तो मोक्ष के निकट की स्थिति चाहता हूं, अथवा मोक्ष की सीमा वैकुंठ नहीं चाहता हूं, मैं मुक्ति नहीं चाहता, वैकुंठ नहीं चाहता, न चाहम वृणे हम वरे साधती है और न च अन्य वृणे, हे वरे साध आप वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कोई वर नहीं मांगना चाहता हूं, न मुक्ति न वैकुंठ न स्वर न योग सिद्धि। तो मान लीजिए भगवान कहें कि आप चाहते क्या हैं, प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ तो चाहते हैं, तो कहते हैं हाँ इदं ते बपुर्नाथ गोपाल बालम सदाले मनस्या विरास्ताम कि मन्यही, इदं ते बपु ये जो आपका बपु है, इदं इदं शब्द से तात्पर्य यह है कि यह इस स्तोत्र को कहने वाला व्यक्ति यही अनुभव कर रहा है कि वह भगवान कृष्ण के सामने खड़ा है जो कृष्ण उखल में बंधे हुए, इसलिए इदम बपु कह रहे, इदम बपु ते ते इदम बपु, हे श्री कृष्ण ये आपका जो श्री विग्रह आपका जो स्वरूप है क्या, गोपाल बालम गोपाल बाल, गोपाल कहते हैं गौओं का पालन करने वाले गोप और उनका बच्चा, गोपाल बाल का थे नंदलाल, नंद महाराज के पुत्र के रूप में आप हैं, बस यही क्षति सदा ने मनसी आरिह आस्ताम, मेरे मन में सदा आविर्भूत रहे, किम अन्य हमको अन्य से क्या तात्पर्य, अन्य किसी वर से या अन्य किसी आपके स्वरूप से हमको कोई तात्पर्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि केवल आपका यह गोपाल बाल रूप मेरे मन में सदा प्रकट रहे। सदा प्रकट रहे इसका आप इतना ही समझना, इतना ही नहीं समझना चाहिए कि चित्र की तरह प्रकट रहे। गोपाल बाल रूप का अर्थ है लीला करते हुए, उखल में बंधे हुए, माखन चोरी करते हुए, बछड़ों की पूंछ पकड़ करके चलते हुए, इस तरह से जो आपका गोपाल बाल रूप है अपनी लीलाओं के साथ मेरे मन में सदा आविर्भूत रहे, यही मेरी कामना है। कि अन्य हमको अन्य वर से क्या मतलब, कुछ भी नहीं। उसमें भी इदंते मुखाम्भोज अत्यंत नील वृतम कुंकल स्निग्ध रक्त गोप्या मुहुश्चुंबित बिंब रक्त मनस्या विरास्ताम अलम लक्षला रहे। इदम पे मुखाम भोजम, यह जो आपका मुख है, बाल कृष्ण भगवान के मुख की याद करके कहते हैं इदम पे मुखाम भोजम, ये जो आपका मुख कमल है वह अत्यंत नील ही कुंतल ही वृतम, अत्यंत काले काले अलकों से आवृत, अत्यंत नील, अत्यंत नील का अर्थ काला। नीला शब्द कहने का कुछ दूसरा अर्थ होता है, नील कुंतल कहते, काले को भी नील कहते हैं। तो आपका यह जो मुख है उस पर काली काली घुंघराली अलके लटकी हुई है, और अलके कैसे हैं, स्निग्ध रक्त, स्निग्ध रक्त, स्निग्ध रक्त, स्निग्ध का अर्थ है ऐसा लगता है कि उसमें तेल लगाया गया है, अनेक प्रकार का छलक रहा है, तो बहुत सुंदर। तो ऐसे स्निग्ध और अत्यंत नील कुंतलों से आपका मुख आवृत है, और गोप्या मुहुश चुंबितम, और गोपी यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित, मां यशोदा श्री कृष्ण को गोद में लेकर के मुख को बारंबार चुंबती। और कैसा मुख है, एक तो हम भोज कह रहे हैं और दूसरा बिंब रक्ता भरम, जिस मुख में बिंब फल के समान, कुंदरू के समान लाल अधर है, उसको मां यशोदा चुमती रखी। नहीं बस बच्चे भी बड़े प्रसन्न होते हैं उनको उनका चुंबन किया जाता, छोटे छोटे बच्चों का, बिल्कुल छोटे बच्चे जो गोद में, तो मां यशोदा जिस मुख को हमेशा चुमती रहती है, और जो मुख कमल काली काली घुंघराली अलकों से, स्निग्ध अलकों से झुकता है, वह मुख मेरे मन में सदा आविर्भूत रहे, हमको अलम लक्ष्य लाभ, और लाखों लाखों लाभ से कोई मतलब नहीं। अलम लक्ष्य लाभ है, एक लाभ नहीं, लाखों लाख लाभ, मतलब योग सिद्धि, मोक्ष, यस परमेश या नागपृष्ठ, जो कुछ भी है हमको इससे कोई मतलब नहीं। हमको एक ही चीज चाहिए कि आपका मुख कमल हमारे मन में सदा स्फुरित रहे, और सदा यह याद रहे कि आपके मुख पर नीली नीली अलके हैं, और गोपी यशोदा बार बार आपके मुख को, अधर को चुम रही है। बस यही हमें याद रहे, और कुछ भी नहीं चाहिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। इदं ते मुखाम भोजम अत्यंत नील व्रतम कुंतल स्निग्ध रक्त गोप्य मुहुश चुंबितम बिंब रक्ता धर्म। इस जगत में जो बच्चे होते हैं तो उनका शरीर जो होता है प्राकृत होता है, धातु से बना हुआ, अस्थि रक्त मांस, जब यह इतना सुंदर लगता है और ऐसे मुख को भी माताएं चुनती हैं तो उनको सुख मिलता है। जहां सच्चिदानंद घन भगवान हैं, उनके मुख को चुन करके, उनको दूध पिला करके मां यशोदा को कितना सुख मिलता होगा, इसकी कौन कल्पना कर सकता है। तो यही रूप मेरे मन में सदा आविर्भूत रहे, ऐसी आप हम पर कृपा कीजिए। अलम लक्ष्य लाभ, नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जाला दिमग्नम। हे दामोदर, हे उखल में बंधे हुए, आपके उदर में दाम है, रस्सी है, हे देव, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख के जाल रूपी समुद्र में घिरा हुआ, दुख के समुद्र में पड़ा हुआ, आप कृपा दृष्टि से मेरी तरफ देखिए। गृहार सम्मज्ञ मैं दक्ष दृश्य, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो मान लीजिए भगवान ने मुझसे पूछे कि आप क्या कृपा चाहते हैं। पहले तो कह रहे थे कि आपका यह गोपाल बाल रूप मेरे मन में उदित हो, फिर कहते हैं कि आपका यह मुख मेरे मन में सदा उदित रहे, और अब कहते हैं कि मैं दुख से घिरा हुआ हूं, हे विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तो आप चाहते क्या है? तो कहते हैं कि आप मुझे दिखाई पड़िए, यही बालक रूप में आप मुझे दिखाई पड़िए। और पुनः प्रार्थना कर रहे हैं, कुबेरात मजौ बद्ध मूर्त वजद त्वया मोचित भक्ति भाजव कृपा उचा। आप उखल में बंधे थे और बंधे बंधे ही कुबेर जी के दोनों आत्मजों को आपने अनुग्रहित किया, कृपा किया उन पर। यह अद्भुत बात है कि भगवान बंधे थे और बंधे बंधे कुबेर के पुत्रों को मुक्त किए। तो दो मुक्त पुरुष बद्ध भगवान की स्तुति कर रहे थे, बहुत सुंदर छवि है। अब तक तो बद्ध जीव भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन मुक्त जीव बद्ध भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उखल में बंधे हुए भगवान अपने कर्म के कारण, अपराध के कारण मां के द्वारा बांधे गए। मां की दृष्टि में कृष्ण ने बहुत बड़ा अपराध किया था, मटका छोड़ देना, मां को हैरान करना, इधर उधर भागना, तो उसने बांधा था। यह कृष्ण की एक सजा थी और कृष्ण स्वयं खोल नहीं सकते थे। और जमलार्जुन दोनों वृक्ष से कुबेर के दोनों पुत्र प्रकट हुए तो वे लोग उखलना नहीं चाहते थे। तो प्रश्न हो सकता है कि वे क्यों नहीं खोले कृष्ण को, वो तो देवता थे, समर्थ, खोल सकते थे, वो खोले नहीं। हरिश्री जी इस पर बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा किए हैं कि भगवान उस समय सगुण थे, गुण का अर्थ रस्सी होता है, गुण के साथ थे, तो सगुण होकर के ही उन्होंने इनका उद्धार किया था, गुण के साथ रस्सी के साथ होकर उद्धार किया था। तो उन लोगों ने सोचा कि भगवान को निर्गुण नहीं करना है, बिना रस्सी के नहीं करना है, रस्सी के साथ ही रहने दीजिए। और वे चाहते थे कि कृष्ण का बंधा हुआ रूप ही हम लास्ट में देख करके जाए और अपने लोक में भगवान की इस लीला का प्रचार करें। इसे वो खोलना नहीं चाहते थे, भगवान का खुला हुआ रूप पर वो देखना नहीं चाहते थे, बद्ध रूप ही देखना चाहते थे रस्सी में। तो कुबेरात्म जब बद्ध मूर्ति व जद वया मोचित भक्ति भाजव कृतव कौ चौ। तो कुबेर आत्मा जो कुबेर जी के दोनों पुत्र नल कुबेर और मणि के आपके द्वारा उद्धृत हुए, आपने उन पर कृपा किया, कैसे बद्ध मूर्ति आए वह, बद्ध मूर्ति आए वह, आप बंधे थे, मां के द्वारा बांधे गए थे और उसी रूप से आपने उद्धार किया उनका। केवल उद्धार ही नहीं किया, केवल वृक्ष ज्योनि से उनको मुक्त नहीं किया, बल्कि भक्ति भाजो कृतव च, भक्ति भाज कृतव, भक्ति के पात्र बन गए। भाज का अर्थ होता है बर्तन, भाजन, भक्ति भाज, भक्ति के पात्र बनाए गए, अर्थात लबालब उनमें भक्ति भरी गई। वो वृक्ष जमी से मुक्त हुए और आपने उन्हें भक्ति का दान दिया, जैसा उन्होंने माना था, बाणी गुणान कथने श्रवण कथाय इत्यादि प्रार्थना किया। तो भगवान उनको भक्ति दिए, मुक्त भी किए, भक्ति दिए। जैसे उनको आपने मुक्त किया और भक्ति दिया, तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयत्न, ठीक वैसे ही प्रेम भक्ति अपने चरणों में हमको दीजिए, स्वकाम्य प्रयत्न। न मोक्षे ग्रहो मिष्टि दामोदर, हे दामोदर, इस जीवन में हमें मुक्ति की कोई कामना नहीं है। बारम्बार यह बात कही जा रही है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। यह बात संसार में लोग नहीं समझ पाते, लोग मुक्ति को बहुत बड़ी चीज जानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो जाता है वो मुक्ति को तो पूछता नहीं है। बिल्वानंद ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, जब आपके चरणों में हमारा प्रेम रहेगा तो मुक्ति तो मुक्ति मुकुलितांजलि सर्व समान, मुक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगी कि कब उसको हम सेवा का मौका दें। मुक्ति हाथ जोड़ कर खड़ा रहते हैं, वैसे में पूछते नहीं है। बारम्बार यह कहा, तीन बार ये बात कही जा रही, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए, अलम लक्ष्य लाभ है, हमको ये नहीं चाहिए। इसमें संसार में कहा जाए तो मोक्ष शब्द का बड़ा आदर है। हाँ, इसे मोक्ष मिलेगा, इसे मिलेगा। मोक्ष का अर्थ भी भगवान का पार्षदत्व ही होता है। विष्णु अनुचरत्व ही मोक्षम बाबर मनीषी, मनीषी लोग कहते हैं कि विष्णु की जो नित्य दासता है उनके धाम में, यही मोक्ष है। पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला के आनंद में डूबा हुआ व्यक्ति इस मुक्ति को भी नहीं चाहता। एक भक्त ने लिखा है कि हम वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर फालतू दो बांह का भार कौन ढोएगा। वहां सुनते हैं कि चार बांह हो जाता है, वो व्यंग कर रहा है। सुनते हैं वैकुंठ में चार बांह हो जाता है, तो फालतू दो बांह में ढोना नहीं चाहता, इतना ही ठीक है। और जब दुर्भुज रह करके गोलोक वृंदावन धाम नहीं मैं रहना चाहता हूं, मैं भगवान नारायण के धाम में नहीं जाना चाहता। एक कवि ने बहुत सुंदर उपेक्षा किया है, गंगा जी की महिमा लिखा है। इस बात पर मुझे ये बात याद आ गई, गंगा जी की महिमा लिखा है। तो एक बहुत बड़ा पापी गंगा जी में स्नान करने जा रहा था, तो उससे कोई व्यक्ति सावधान कर रहा है, देखो गंगा में स्नान मत करो, गंगा में मत जाओ, अन्यथा गंगा तुम्हारी बहुत दुर्दशा कर देगी। तो कभी लिखा है कि गंगा जी में स्नान करने से शिवलोक प्राप्त होता है, शिव जी का स्वरूप हो जाता है जीव। इसने ये लिखा, कई बातें लिखी है, विष्णु स्वरूप हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है। तो सावधान कर रहे, तो देखो गंगा में स्नान कर रहे हो ना, तो इस जीवन के बाद तुम्हें मग्न रहना पड़ेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा पहनने को। इसका मतलब शिव जी हो जाओगे तो फिर मग्न रहना पड़ेगा। तो प्रकारांतर से गंगा जी की महिमा बता रहा है कि अगले जन्म में तुम मग्न रहोगे और खाने पीने के लिए मिठाई कभी नहीं मिलेगी, जहर खाया करोगे। वो गंगा इतनी मतलब ये बुरी नदी है, ठीक नहीं है। और सांप लगाना पड़ेगा गले में, चीता की राख लगानी पड़ेगी, और बूढ़ा बैल मिलेगा उसी पर घूमोगे। इसलिए ये मत नहाओ गंगा, गंगा बहुत खतरनाक है। उसी कवि ने एक पद में लिखा है, एक बार गंगा जी में नहाने एक व्यक्ति जा रहा था, बहुत बड़ा पापी था। गंगा जी के पास पहुंचा तट पर, नहा नहीं पाया, तट पर मर गया। उस तट पर बैठा था, सोया था, बैठा था, तो पापी नहीं, एक सांप, मैं भूल रहा हूं, एक बहुत बड़ा सांप गंगा जी के पास गया और गंगा जी ने वो कुछ खाना चाहता था, सांप किसी जीव को कुछ करना चाहता था। तब तक तो गरुड़ जी देख लिए उस सांप को और वे खाने लगे गंगा जी, तो छिपा रहा गंगा जी में मृत्यु हो गए। तो गरुड़ जी जो उसको खाने के लिए लपक रहे थे और गंगा जी में मरा, तो तत्काल चतुर्भुज रूप हो गया उसका और उन्हीं गरुड़ जी के कंधे पर चढ़कर वैकुंठ गया जो खाना चाहते थे। ये गंगा जी की महिमा है, वो सात गरुड़ जी ने कंधे पर सवार किया, वो भगवान के धाम में गए, गरुड़ बड़े प्रेम से ले गए उसको। गंगा जी में शरीर छोड़ने से महिमा है, कवि वर्णन करता है। इसी तरह से एक प्रकारांतर से कहा जाता है, मुक्ति को बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन वैसे देखा जाए मुक्ति का वास्तविक अर्थ, तो उसका वास्तविक अर्थ है भगवान का भक्त होना चाहिए। मुक्त हो गए, सर्वोपाधि मुनि मुक्तम। लेकिन मुक्ति शब्द का जो अर्थ लोक में पची प्रचलित है वास्तव में बहुत भयावह चीज है, उचित नहीं। तो भक्त लोग है जो भगवान की बाल लीलाओं में आसक्त हो जाते हैं, ये लोग भगवान के अन्य लीलाओं में मन को जाने नहीं देते हैं, उसी को ये कह रहे हैं कि भक्त मूर्ति में जग सुबेरात मजौ बद्ध मूर्ति व जगवतया मोचित भक्ति भाजो कृत तथा प्रेम भक्ति सौकाम्य प्रयोग मुख्य ग्रहों में श्री वायु करे। हे दामोदर, मेरा मोक्ष में आग्रह नहीं है, मोक्ष जो चाहते हैं उनको दिया कीजिए, हमको तो बस उखड़ में बंधे हुए आप दिखाई करिए और उसी रूप में हमारा प्रेम दीजिए, प्रेम भक्ति दीजिए। इस मनोरथ की सिद्धि के लिए पुनः प्रणाम कर रहे हैं। नमस्ते श्री दाम ने स्फुरत दिव्य धाम ने जो दिल में डराया तो विश्व से धाम ने, मैं उस रस्सी को प्रणाम कर रहा हूं, उस दाम को प्रणाम कर रहा हूं जिसमें आप बांधे गए हैं। और कुबेर के दोनों पुत्र जब जा रहे थे स्वर्ग अलकापुरी, तो लोग बारम्बार प्रणाम कर रहे थे, भगवान जिस रस्सी में बने थे उस रस्सी को प्रणाम कर रहे थे, धन हो रस्सी, तुम यदि नहीं उदर में होती तो भगवान हमारा उद्धार नहीं कर सकते। तो वास्तव में भगवान ने उद्धार नहीं किया था, रस्सी और उखल ने उद्धार किया था। तो उसे उखल को ही प्रणाम कर रहे थे, बारम्बार रस्सी को प्रणाम कर रहे थे, ध्यान दे। क्योंकि इसके पहले भगवान कई बार दोनों परीक्षा के बीच से गुजरे थे, वो बच्चों के साथ आंख बिचौने खेलते थे तो वृक्षों के आसपास इधर उधर घूमा करते थे, हजारों बार खेले, उनका अनुमान भी किए थे, उनके बीच से गुजरे थे। लेकिन उस बार जब वो चल रहे तो उखल अटक गया और भगवान ने खींचा रस्सी को, तो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, नींद से उखड़। इसीलिए नलकुबर और मणिपुर दोनों उखल में बार बार प्रणाम कर रहे। तो शतमुख मुनि यह प्रणाम करें, नमस्ते दाम ने, ते दाम में नमः अस्तु, आपके दाम को प्रणाम, रस्सी को प्रणाम है जो आपके उदर में बंधा हुआ है। भगवान ने उद्धार किया कुबेर के पुत्रों का, तो उसमें साधन आज तक वैष्णव भगवान के स्वरूप को वास्तव में बहुत पसंद करते बंधे हुए। तो आपके धाम को नमस्कार है, स्फुरदीप्त धाम जो रस्सी चमक रही है, आपके उदर में बंधी हुई रस्सी और मुखल में बंधी हुई उस रस्सी को हम प्रणाम कर रहे हैं जो बहुत चमक रही है। तो भी वो डराया आपके उदर को प्रणाम, जिसमें रस्सी बंधी हुई उसके उदर को पेट को प्रणाम कर रहे हैं। तो आपके उदर को प्रणाम है जो विश्व का धाम, संपूर्ण विश्व जिस उदर के भीतर है, वह उदर एक रस्सी लट गया है, रस्सी से बंधा हुआ है, ऐसे उदर को पेट को हम नमस्कार करते हैं और अंत में प्रणाम करते हैं। श्री राधिका को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी कृपा से आप मिलेगी। नमो राधिकायै त्वदीय प्रियाय, आपकी परम प्रियतमा श्री राधा को मैं प्रणाम करता हूं। नमो अनंत लीला हे अनंत लीला विलासी, इस तरह के अनंत लीला करने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूं। अथवा अनंत के साथ लीला करने वाले भगवान जी के साथ लीला करने वाले आपको मैं प्रणाम करता हूं। इस तरह से ब्राह्मण राष्ट्र पूरा हुआ। मैं तो संक्षेप में केवल अनुवाद किया इसका, व्याख्या नहीं किया वास्तव में, व्याख्या को समझ में आया था। बहुत अच्छा हुआ, हमको सुझाव दिया था ब्रह्मचारी प्रभु जी ने, इसको कहिएगा उनकी भक्ति से कुछ स्मरण हुई। हरे कृष्ण ना, तो प्रश्न इसी लीला से युक्त होना चाहिए। निर्वासी से देखना चाहते थे वैकुंठ कैसा होता है क्या होता है, तो भगवान ले गए ब्रह्म हृदय पर जहाँ अक्रूर जी देखे थे भगवान के धाम को भगवान को। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप लोग स्नान के लिए डुबकी मारे तो सबने देखा वैकुंठ धाम भगवान। वैकुंठ और गोलोक दोनों ऐसा में एक ही है, कोई भेद नहीं है, नाम मात्र का थोड़ा थोड़ा भेद। एक बार कनाडा में हमसे कोई व्यक्ति पूछा हम तुम्हारे वैकुंठ और गोलोक में क्या भेद है, मैं कहा जो अमेरिका और कनाडा में भेद है वो अरे भाई कह दिए कोई कोई खास भेद नहीं है, सब घर देखिए रंग देखिए कार देखिए सब एक ही समान। तो इसे फिर व्यक्ति कहा कि इसे कौन गोलोक है कौन वैकुंठ है, तो आप देखिए अरे इसमें अंतर नहीं है। इसलिए मैं कहा कनाडा वाले बिना दिशा पे आ जाते हैं अमेरिका, अमेरिका वाले कनाडा में जाते हैं बिना दिशा, कोई चुपचाप नहीं। वह भगवान का ऐश्वर्य में धाम है वहां जिसे खोज में रहते हैं, और गोलोक भी वैकुंठ में ही है तो वहां दूसरे रूप में रहते हैं, बाल लीला करते हैं किशोर लीला करते हैं, लेकिन धाम वास्तव में एक ही है सुधेर नहीं। प्रकृति से पार है सब कुछ, चिन्मय है भूमि जल वृक्ष पक्षी और वहां के परिकर जो भगवान के सब कुछ चिन्मय है, स्वरूप शक्ति है वहां जल कुछ भी नहीं। वो खुश हुए आनंदित हुए देख करते हैं, लेकिन वो तो स्वयं ही वैकुंठ में रह ही रहे थे, ब्रज वैकुंठ ही है। तो कहा करो वैकुंठ क्या करूंगा, वैकुंठ क्या करवाना है। तो इसके लिए वही कहा गया है कि बहुत बहुत भेद है। आप उस तरह से भेद देखेंगे तो कुछ भक्त तो भगवान कृष्ण में भी भेद कर देते हैं, जो तो हमको द्वारका मथुरा से क्या काम है ऐसे कहते हैं, वो क्या जरूरत है द्वारका मथुरा से, हमारे मुरली वाले से हैं, मुरली वाले कृष्ण हमारे, हमको द्वारका मथुरा से कोई बात नहीं। तो भाव से प्रेम से मन मन से ऐसे कहा जाता है, लेकिन स्वरूप का वर्णन नहीं किया जाता, स्वरूप तो एक ही है वास्तव में सब। बिना वस्त्र के नहाए है तो इसलिए कृपा हो गई, बिना वस्त्र के नहा रहे थे यह कृपा का कारण नहीं हुआ। नारद जी का वहां आना ये सबसे बड़ा सौभाग्य हो गया, किसी भी दशा में नारद जी तो और भी जगहों पर जाए हैं, वो ध्रुव महाराज से कृपा की और सब कृपा की, इस सब कृपा की और जो नग्न नहा रहे हैं वो लोग तो सीधा नरक में जाएंगे, कोई बीच में भाया वाया भी नहीं होगा, सीधा नरक। भगवान ने बुद्धि दिया वस्त्र से ढक करके हमको रखना चाहिए, नहाना चाहिए। वो तो बहुत पाप कर रहे थे, वो तो संत की दया दृष्टि थी, उनकी कृपा से पार हो गए। नहीं तो बहुत ज्यादा था और बेचारे भूखे थे, तो क्या करें। समय जो आएगा उसी को देगा ना, कल्प वृक्ष की छाया में जो आता है उसको देता है। बानर को दे रहे थे, और कुछ भक्त कहते हैं कि भगवान श्री राम बानरों को लंका ले गए थे, फ्री लड़ाए थे, कोई वेतन नहीं दिए थे, उसी को भगवान पूरा कर रहे हैं, माखन खिला खिला कर। और दूसरी बात यह है कि ये बानर बानर नहीं थे, वास्तव में देवता जन सब थे, ऋषि मुनि थे, जो जाकर भगवान के हाथ से खाना चाहते थे। वास्तव में कोई सामान्य बानर नहीं थे, वृक्ष वृक्ष नहीं थे और भावरा भावरा नहीं थे। तो भगवान के लीला के परिकर थे, वो रूप बना बना करके भगवान के साथ आनंद ले रहे थे। उसके विषय में बहुत बातें नहीं लिखी गई हैं, श्री नारद जी संकादि ऋषियों को कार्तिक महात्म बता रहे हैं। तो उसी कहते हैं कि एक सतव्रत मुनि थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की उपासना की थी, और उपासना करते हुए उन्होंने ये अष्टक पढ़ा था। बस इतना ही वर्णन था।